ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर 3 नए मंत्रियों की की गई नियुक्ति। 2 मंत्रियों के मंत्रालय में किया गया फेरबदल। देशभर में आज 2638 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। 2174 हुए कोरोना संक्रमण मुक्त। 12 संक्रमितों की हुई मौत। जोखिम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों और आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग का निःशुल्क कोरोना परीक्षण करने का स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्देशिका संशोधित। और दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। अब तक 10,93,000 से अधिक की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर जहां एक ओर मंत्रिपरिषद में कुछ नई नियुक्तियां की हैं, वहीं दूसरी ओर कार्य विभाजन में फेरबदल किया है। आज जिन लोगों की नई नियुक्ति हुई है उनमें विष्णु प्रसाद पौड़ेल जिन्हें अर्थ मंत्रालय, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ को शहरी विकास और लीलानाथ श्रेष्ठ को महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह ईश्वर पोखरेल को उप प्रधान एवं प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पार्वत गुरुंग को संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ओली ने स्वयं अपने पास रखा है। आज देशभर में 2638 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देशभर में कुल संक्रमितों की संख्या 1,17,996 हो गई है। इसी तरह आज देशभर में 2,174 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही देशभर में कोरोना संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या 80,954 हो गई है। बहरहाल देशभर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 36,367 है। आज ही कोरोना संक्रमण के कारण 12 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों की कुल संख्या 675 हो गई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने यह जानकारी दी। साथ ही प्रवक्ता डॉ गौतम ने बताया कि अस्पतालों के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने एवं जनशक्ति व्यवस्थापन के लिए प्रति अस्पताल की दर से 10,00,000 रूपये भेजे गए हैं। मंत्रालय ने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में 34 वेंटिलेटर और 100 आईसीयू बेड बनाने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सामाजिक संजाल ट्विटर के जरिए प्रतिनिधि सभा सदस्य सानू शिवा पहाड़ी के निधन के प्रति दुख व्यक्त किया है। इसी तरह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ने भी पहाड़ी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पहाड़ी लंबे समय से किडनी और दिल की बीमारी से पीड़ित थे। आज उनका इलाज के क्रम में काठमांडू मेडिकल कॉलेज में निधन हुआ। कल सुबह 11 बजे पशुपति आर्यघाट में उनका अंत्येष्टि किया जाएगा। प्रदीप कुमार ग्यवाली और उद्योग वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट ने ऊपरी मुस्तांग में रहे कोरला नाका का स्थगित निरीक्षण किया है। सीमा स्तंभों और पूर्वाधार की अवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे दोनों मंत्रियों ने नाका संचालन संबंधी विचार विमर्श को आगे बढ़ाने की बात कही है। परराष्ट्र मंत्री ग्यवाली ने कहा कि नाका संचालन के लिए आवश्यक विचार विमर्श सरकार द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसी तरह उद्योग मंत्री भट्ट ने भी कोरला नाका को व्यापारिक प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसको संचालित कर नेपाल और चीन व्यापार संबंधों में और भी सुधार होंगे। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
14-15 बजारमा नयाँ के थाहैन। नेपाल टेलिकम का विभिन्न सेवा का अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ। त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। गृह मंत्री रामबहादुर थापा ने नेपाल के लिए यूरोपियन यूनियन ईयू के राजदूत नोना देप्रिज से नेपाल की हवाई सेवा में लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का आग्रह किया है। मंत्रालय में आज की गई मुलाकात में मंत्री थापा ने नेपाल के विकास, लोकतंत्र, मानवाधिकार, विपत्ति व्यवस्थापन आदि क्षेत्रों में यूरोपियन यूनियन द्वारा किए गए सहयोग प्रति धन्यवाद देते हुए आगामी दिनों में भी इस प्रकार के सहयोग की निरंतरता की आशा व्यक्त की। इस अवसर पर राजदूत देप्रिज ने नेपाल के हवाई क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंध को प्राविधिक विषय बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विषय में ईयू की प्राविधिक समिति द्वारा अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही निष्कर्ष तक पहुंचने की आश्वासन दिया। मंत्रिमंडल पुनर्गठन होने से पहले आज आयोजित कार्यक्रम में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरुंग ने बाल अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संघ संस्थाओं को एकीकृत कार्यक्रम बनाकर आगे बढ़ने का आग्रह किया। बाल सहभागिता कार्यरत संस्थाओं की साझा समूह कंसोर्टियम नेपाल द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लाए गए कार्यक्रमों को प्रभावकारी बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने बाल बालिका से संबंधित केंद्रित कार्यक्रम को प्रभावकारी बनाने के लिए बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय अंतर्गत रहे मंत्रालयों के साथ सहकार्य करते हुए आगे बढ़ने की बात कही। देश के विभिन्न स्थानीय तहों में समुदाय स्तर पर कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के बाद पालिकाओं की कई सेवाओं को बंद किया गया है, जबकि कुछ पालिकाओं को सील भी किया गया है। नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम स्थित बर्दघाट नगर पालिका के जन प्रतिनिधियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद सेवाओं को बंद किया गया है। नगर प्रमुख धीरज शर्मा में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद नगर पालिका की अत्यंत जरूरी सेवाओं के अलावा सभी सेवाओं को बंद किया गया है। इसी तरह स्यांगजा की चापाकोट नगर पालिका में भी अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा सभी सेवाओं को बंद किया गया है। एक ही दिन में 14 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद नगर पालिका ने संक्रमण का समुदाय स्तर में फैलने से रोकने के लिए अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा सभी सेवाओं को बंद किया है। ये जानकारी नगर पालिका के प्रमुख शिव कुमार गिरी ने दी। इसी तरह पर्वत की जलजला गांव पालिका के अध्यक्ष यम बहादुर मल्ल रामकृष्ण का भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद गांव पालिका की सभी सेवाओं को बंद किया गया है। ये जानकारी गांव पालिका के प्रशासक के अधिकृत अर्जुन शर्मा ने दी। रामेछाप की मंथली नगर पालिका में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद कार्यालय को बंद किया गया है। नगर पालिका ने आश्विन 28 से कार्तिक 2 गति तक के लिए कार्यालय द्वारा दी जाने वाली अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। ये जानकारी नगर प्रमुख रमेश कुमार बसनीत ने दी। इसी तरह बांके की कोहलपुर नगर पालिका को आगामी कार्तिक 6 गति तक के लिए सील किया गया है। नगर पालिका के कार्यालय में कुछ कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद नगर पालिका कार्यालय, 15 वार्ड कार्यालय और विषयगत कार्यालयों को सील किया गया है। ये जानकारी नगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल नेपाली ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 3,85,35,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,89,59,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 10,93,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां संक्रमितों की संख्या 81,03,000 से अधिक हो गई है। वहीं यहां मरने वालों की संख्या 2,21,000 से अधिक है, जबकि भारत में संक्रमितों की संख्या 72,75,000 से अधिक है, जबकि 1,10,000 से अधिक की लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में 51,14,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,51,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर 3 नए मंत्रियों की गई नियुक्ति। 2 मंत्रियों के मंत्रालय में किया गया फेरबदल। देशभर में आज 2,638 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। 2,174 हुए कोरोना संक्रमण मुक्त, 12 संक्रमितों की हुई मौत। जोखिम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों और आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग का निःशुल्क कोरोना परीक्षण करने का स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्देशिका संशोधित और दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, अब तक 10,93,000 से अधिक की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से मुझे आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल, शुभरात्रि।